ये रेडियो नेपाल है। अब सीमा शर्मा से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। जबरन गुम किए गए व्यक्ति संबंधी छानबीन एवं सत्य निरूपण तथा मेल मिलाप आयोग तीसरे संशोधन विधेयक संबंधी समिति का प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभा में हुआ पेश। युवाओं को उद्यमशील बनाने की योजना तैयार हो रही है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का कथन। सभी 7 प्रदेशों में मानव अंग प्रत्यारोपण के लिए उपकेंद्र खोलने की स्वास्थ्य मंत्रालय की है तैयारी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 8 राज्य मंत्रियों का किया पदमुक्त। और यूक्रेन ने रूस का करीब 1000 वर्ग किलोमीटर भूभाग अपने कब्जे में होने का किया दावा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कहा कि सत्य निरूपण तथा मेल मिलाप लगायत सशस्त्र द्वंद्वकालीन मुद्दों का निराकरण नेपाल के अपने ही अनुभव और आवश्यकता के आधार पर होगा। आज महान्यायाधिवक्ता कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ओली ने कहा कि अन्य देशों की नकल करने की बजाय अपने ही मौलिक ढांचे में सशस्त्र द्वंद्वकालीन मुद्दों का निराकरण करने के हिसाब से राजनीतिक दलों के बीच विचार विमर्श हो रहा है। उन्होंने आगे कहा कि संसद में विचाराधीन सत्य निरूपण तथा मेल मिलाप आयोग संबंधी विधेयक पारित होने के बाद नेपाल की न्याय प्रणाली नए युग में प्रवेश करेगी और उन्होंने विश्वास जताया कि ये काम द्वंद्व व्यवस्थापन के मामले में विश्व के लिए नए उदाहरण के रूप में स्थापित होगा। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कहा कि युवाओं को उद्यमशील बनाने के कार्यक्रम और योजना तैयार हो रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर आज काठमांडू में आयोजित नेपाल युवा सम्मेलन के समापन कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ओली ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि छोटी छोटी उद्यमशीलता के कार्यक्रम सहित विकास की गति को बढ़ाने के लिए सरकार क्रियाशील है। इस बात का जिक्र करते हुए कि वर्तमान में जनसंख्या वृद्धि दर कम है, उन्होंने युवाओं से सुंदर भविष्य के लिए 20 साल की उम्र के आसपास शादी करने और जल्दी संतान प्राप्त करने की योजना बनाने का युवाओं से आग्रह किया। प्रतिनिधि सभा की आज की बैठक में सांसदों ने भ्रष्टाचार न्यूनीकरण, डेडिकेटेड लाइन और ट्रक लाइन की समस्या के समाधान, स्वदेश में ही रोजगार सृजन, कानून निर्माण लगायत विषयों में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया। बैठक में कांग्रेस के महामंत्री गगन थापा ने भूटानी शरणार्थी प्रकरण, गिरिबंधु जमीन प्रकरण और डेडिकेटेड व ट्रक लाइन संबंधी मामलों को सदन में स्पष्ट करने का आग्रह किया। इसके अलावा विभिन्न समसामयिक विषयों में विभिन्न सांसदों ने सरकार का ध्यान आकृष्ट किया। जबरन गुम किए गए व्यक्ति संबंधी छानबीन सत्य निरूपण तथा मेल मिलाप आयोग तृतीय संशोधन विधेयक संबंधी समिति का प्रतिवेदन 2081 आज प्रतिनिधि सभा में पेश किया गया। बैठक में कानून न्याय तथा मानव अधिकार समिति की सभापति बिमला सुवेदी ने विधेयक संबंधी समिति का प्रतिवेदन 2081 पेश किया था। इसी तरह पूर्वाधार विकास समिति के सभापति दीपक बहादुर सिंह ने पूर्वाधार विकास समिति का वार्षिक प्रतिवेदन 2080 पेश किया। वहीं शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति के सभापति अंबर बहादुर थापा ने शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति का वार्षिक प्रतिवेदन 2081 पेश किया। प्रतिनिधि सभा की अगली बैठक कल दोपहर 1 बजे के लिए बुलाई गई है। संसदीय सुनवाई समिति ने 17 देशों के लिए प्रस्तावित राजदूतों की सुनवाई प्रक्रिया प्रारंभ की है। आज समिति की ज्येष्ठ सदस्य पशुपति शमशेर जबरा की अध्यक्षता में हुए सुनवाई समिति की बैठक ने प्रस्तावित राजदूतों के संबंध में 10 दिनों के भीतर सार्वजनिक सूचना मार्फत शिकायत आह्वान करने का निर्णय किया है। बता दें कि नेपाल के संविधान की धारा 292 अनुसार राजदूत पद पर सिफारिश किए गए लोगों पर संसदीय सुनवाई करने की व्यवस्था है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के साथ नेपाल के लिए ब्रिटेन के राजदूत रोब फेन ने आज शिष्टाचार भेंट की। प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद कार्यालय सिंह दरबार में हुई भेंट में दो देशों के आपसी संबंध और हितों के बारे में विचार विमर्श हुआ है। समाचार रेडियो नेपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं। अब कुछ देर विज्ञापन।
ए छोरा के छ हाल खबर? पढाई कस्तो चल्दैछ?
सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा?
यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ला तेरो आमासँग कुरा गर।
पर्दैन पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ?
किन टेन्सन लिन्छस् बाबु, हामी जस्ताको लागि एनटिसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा।
ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त।
सेवा सुचारू गर्नका लागि *1415# गर्नुहोस्।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाँकी समाचार। सरकारले खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड के महाप्रबन्धक पद पर धादिङ के रमेश आचार्य को नियुक्त करने का निर्णय किया गया है। मन्त्रिपरिषद की बैठक में नेपाल पारवाहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी लिमिटेड के महाप्रबन्धक पद पर इलाम के प्रकाश प्रसाद पोखरेल को नियुक्त करने का निर्णय किया गया है। यह जानकारी सरकार के प्रवक्ता एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरूंग ने दी। श्रावण 28 गते सोमवार को हुई मंत्रिपरिषद के बैठक के निर्णयों को साझा करने के लिए आज संचार मंत्रालय में आयोजित पत्रकार सम्मेलन में संचार मंत्री गुरुंग ने कहा कि सरकार ने संघीय भू उपयोग परिषद के सदस्य पद पर चितवन के डॉ रेवती रमन पौड़ेल और डॉ यमुना घले तथा काठमांडू की डॉ रेशमा श्रेष्ठ और जगत बहादुर देउजा को मनोनीत करने के साथ ही कई अन्य निर्णय मंत्रिपरिषद ने किये। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरूंग ने कहा कि आम संचार परिषद को स्वायत्त और स्वतंत्र बनाया जाएगा। आज राष्ट्रीय सभा अंतर्गत की विधायन व्यवस्थापन समिति की बैठक में मंत्री गुरूंग ने आम संचार परिषद गठन के बाद नेपाली प्रेस और अधिक स्वतंत्र और मर्यादित होने का विश्वास व्यक्त किया। मंत्री गुरूंग ने कहा कि नेपाली पत्रकारिता क्षेत्र के व्यवस्थापन के लिए आम संचार परिषद की महत्वपूर्ण भूमिका है, इसलिए विधेयक लाया गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सतीश कुमार सिंह ने 8 राज्य मंत्रियों को पदमुक्त करने का निर्णय किया है। इसी श्रावण 22 गते गठित मंत्रिपरिषद में शामिल किए गए सभी राज्य मंत्रियों को पदमुक्त करने के लिए मुख्यमंत्री ने प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भंडारी के समक्ष सिफारिश की। ये जानकारी कार्यालय ने दी। बता दें कि मधेश में 20 सदस्यीय मंत्रिपरिषद गठित हुई थी, जिस पर चारों ओर से विरोध हुआ था। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री प्रदीप पौड़ेल ने सभी 7 प्रदेशों में मानव अंग प्रत्यारोपण के लिए उपकेंद्र खोले जाने की घोषणा की है। आज विश्व अंगदान दिवस के अवसर पर भक्तपुर स्थित शहीद धर्मभक्त राष्ट्रीय प्रत्यारोपण केंद्र में अंगदान करने वालों को सम्मानित करते हुए मंत्री पौड़ेल ने बताया कि उन्होंने जो कार्य योजना सार्वजनिक की है उसमें भी ये विषय समेटा गया है। यूक्रेन ने दावा किया है कि उसकी सेना ने रूस में 1000 स्क्वायर किलोमीटर भीतर घुस गई है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस हमले को उकसावे वाला बड़ा कदम बताया है। उन्होंने रूसी सेना को आदेश दिया कि दुश्मन को हमारे क्षेत्र से बाहर निकाला जाए। इस बीच यूक्रेन के सैनिक कुसर्क क्षेत्र में मौजूद है। यहां दोनों देशों की सेनाओं के बीच बीते करीब 1 हफ्ते से संघर्ष हो रहा है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार यूक्रेन के वरिष्ठ कमांडर अलेक्जेंडर सिसरकी ने राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को इसकी जानकारी दी है। उन्होंने एक वीडियो लिंक के जरिए जेलेंस्की से कहा कि रूसी जमीन पर चढ़ाई अभी जारी है। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बड़ी संख्या में लोगों की पश्चिमी रूसी क्षेत्र से निकाला जा चुका है। अभी 59,000 और लोगों से क्षेत्र खाली करने को कहा गया है। स्थानीय गवर्नर ने कहा है कि क्षेत्र में करीब 28 गांव है जहां तक यूक्रेनी सेना पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि 12 नागरिक मारे गए हैं और स्थिति अब भी मुश्किल बनी हुई है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 30.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21.3 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। जबरन गुम किए गए व्यक्ति सम्बन्धी छानबिन एवं सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग तीसरे संशोधन विधेयक सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभा में हुआ पेश। युवाओं को उद्यमशील बनाने की योजना तैयार हो रही है, प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का कथन। सभी 7 प्रदेशों में मानव अंग प्रत्यारोपण के लिए उपकेन्द्र खोलने की स्वास्थ्य मंत्रालय की है तैयारी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 8 राज्य मंत्रियों का किया पदमुक्त और यूक्रेन ने रूस का करीब 1000 वर्ग किलोमीटर भूभाग अपने कब्जे में होने का किया दावा। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।